नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार। आज इतिहास नवम पेपर के अंतर्गत सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय का समय काल है 1876 से 1909 ईस्वी के मध्य। सर्वप्रथम सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के द्वारा निरंकुश शासन की स्थापना। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय का शासनकाल तुर्की के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उस समय ओटोमन साम्राज्य की स्थिति कंटकाकृत थी। रूस युद्ध की धमकी दे रहा था, सारा यूरोप विरोधी बन गया था, देश के अंदर विद्रोह की आग सुलग रही थी और खजाना खाली था। विदेशी राष्ट्र सुधारों की मांग कर रहे थे और इस हेतु एक सम्मेलन का आयोजन करने का विचार कर रहे थे। अब्दुल हमीद ने आरंभ में जबरदस्त व्यवहार कुशलता का परिचय दिया। उसने मिद्दत पाशा को अपना वजीर नियुक्त किया और 23 दिसंबर 1876 ईस्वी को तुर्की के नए प्रजातांत्रिक संविधान की घोषणा कर दी। इस संविधान को मेदित पाशा ने निर्मित किया था तथा इसमें प्रजा के जनतांत्रिक अधिकारों एवं द्विसदनात्मक संसद की व्यवस्था की गई थी। सुल्तान ने इस संविधान को स्वीकृति दे दी जिससे उसे काफी लोकप्रियता प्राप्त हुई तथा विदेशी राष्ट्रों का सम्मेलन भी भंग कर दिया गया। परंतु सुल्तान वास्तव में निरंकुश शासन चाहता था तथा अपने पूर्वाधिकारियों की दशा से अच्छी तरह अवगत था। अपने निरंकुश सत्ता के हेतु उसने शीघ्र ही कदम उठाए। फरवरी 1877 ईस्वी में उसने मिद्दत पाशा को पदच्युत कर निर्वासित कर दिया। तत्पश्चात अप्रैल में उसने रूसी तुर्की युद्ध का बहाना करके संसद को भंग कर दिया। इसके बाद उसने अगले 31 वर्षों तक बिना संसद के ही निरंकुश शासन किया। उसने अपने सभी विरोधियों का क्रूरतापूर्वक दमन किया और देश में अपने गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। 1833 ईस्वी में ही मिद्दत पाशा एवं उसके सहयोगियों को सुल्तान अब्दुल अजीज की हत्या का आरोप लगाकर कारावास में डाल दिया गया। उसे फांसी की सजा दी गई परंतु ब्रिटेन तथा फ्रांस के दबाव में फांसी की जगह उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई, परंतु कारावास में ही 1833 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और समानता एवं स्वतंत्रता की बात करना जुर्म करार दिया गया। इस तरह अपनी निरंकुश सत्ता स्थापित करने के बाद उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के प्रयत्न आरंभ किए। 1878 की बर्लिन की संधि द्वारा तुर्की का यूरोपीय भाग प्रायः हाथ से जाता रहा तथा साम्राज्य अब मुख्यतः एशियाई क्षेत्र में ही मौजूद रहा, जिसके निवासी मुख्यतः मुस्लिम थे। ऐसे स्थिति में नए सुल्तान ने एशिया के वासियों के बीच ही अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय की आंतरिक नीति। सर्वप्रथम उसने अपने रिक्त कोष की पूर्ति के लिए अन्य देशों से बड़े बड़े ऋण लिए तथा इसके लिए देश के मुख्य आय के साधनों को विदेशियों के हाथ में गिरवी रख दिया। इस तरह उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना लिया और इस धन को सैनिक संगठन एवं गुप्तचरों पर खर्च करना आरंभ किया। इसके साथ ही इस उसने मुस्लिम एकता के लिए अखिल इस्लामियत का नारा बुलंद किया। इस नारे के द्वारा वह यूरोप को अपनी शक्ति से परिचित कराना चाहता था। इसके द्वारा उसने विश्व भर के मुसलमानों की सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की। उसने खलीफा पद की महत्ता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया तथा पवित्र जीवन पर जोर देने के लिए शराब पीना छोड़ दिया और धार्मिक नेताओं को अपने साथ रखना आरंभ किया। इसी हेतु उसने गैर तुर्क अरबों को ऊंचे पदों पर बैठाया। उसने मक्का, मदीना एवं जेरूसलम के तीर्थ स्थानों की मरम्मत करवाई और तीर्थ यात्रा की सुविधा के हेतु हिजाज रेलवे का निर्माण कराया, जो कि दमिश्क से मक्का तथा मदीना जाती थी। इसके अतिरिक्त उसने धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षणालयों की स्थापना की और मुस्लिम मिशनरियों को अन्य देशों में धर्म प्रचारार्थ भेजा। उसने गैर तुर्क मुसलमानों को कई सुविधाएं दी। उसने ट्यूनीशिया के खेरेदीन को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब यूरोप के मुसलमान भी टर्की में बसाए जाने लगे तथा अपने अंगरक्षकों की नियुक्ति में भी उसने बाहर के मुसलमानों को स्थान दिया। इस प्रकार मुस्लिम धर्म के खलीफा के रूप में उसे विश्व भर के मुसलमानों की समर्थन प्राप्त हुआ। उसने उसका वास्तविक उद्देश्य अपनी सत्ता को संगठित करना था, अतः उसने विरोधी मुसलमानों पर भी दमन चक्र चलाया तथा अरब प्रदेश में अपने गुप्तचरों द्वारा अरबों के आपसी द्वेष को भड़काने की चेष्टा की। मक्का के शरीफ हुसैन को अपना प्रतिद्वंदी समझकर उसने 1893 ईस्वी में उसे कुस्तुनतुनिया में ही रहने के लिए मजबूर किया। इसके साथ उसने अन्य धर्मावलंबियों के कत्ले आम में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई तथा 1895 ईस्वी से 1896 ईस्वी में आर्मेनियन जाति के हजारों व्यक्तियों का कत्ल करा दिया। उसने प्रेस को अपने जबरदस्त नियंत्रण में रखा और जनतंत्र संबंधी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया। सारे देश में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया, जो सभी उच्चाधिकारियों पर नियंत्रण रखते थे। कहा जाता है कि उसके शासनकाल में राजधानी की आधी आबादी गुप्तचरों की थी। इसके साथ ही उसने सेना का भी पुनर्संगठन कराया एवं जर्मन विशेषज्ञ फांडेर गोल्थजुक को इसका कार्यभार दिया। उसने छात्र वर्ग को मिलाने के लिए कई सहूलियतें दी तथा उन्हें मुफ्त वस्त्र, भोजन एवं आवास दिया। इस तरह उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की चेष्टा की। सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय की वैदेशिक नीति। प्रादेशिक क्षेत्र में भी संतुलन ने अपनी व्यवहार कुशलता का परिचय दिया। उसने नवोदित राष्ट्र जर्मनी से साठगांठ आरंभ किया तथा अपने यहां जर्मन विशेषज्ञों को प्रमुख स्थान दिया। 1883 ईस्वी में एक जर्मन मिलिट्री मिशन टर्की में आया, जिसका अध्यक्ष वॉन डॉर्क गोल्च था। इसने टर्की की सेना का आद्योपांत संगठन आरंभ किया तथा इस हेतु कई विद्यालयों की नींव डाली। उसने अपने कार्य में काफी अंश तक सफलता प्राप्त की, लेकिन इसकी राह में सुल्तान की ओर से ही बाधा पड़ी, क्योंकि सुल्तान हर ओर से खतरा अनुभव करता था और मजबूत सेना से डरता था। इसके अतिरिक्त रेलवे लाइन के निर्माण में भी उसने जर्मन पूंजीपतियों, इंजीनियरों एवं विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की। हिजाज रेलवे जर्मन विशेषज्ञों की देखरेख में निर्मित हुआ। इसके साथ ही 1898 ईस्वी में जर्मन सम्राट कैसर ने कुस्तुनतुनिया एवं दमिश्क की यात्रा की तथा सुल्तान को खुलेआम अपना बंधु एवं मित्र घोषित किया और इस्लाम धर्म से सहानुभूति जताई। इसके अतिरिक्त उसने बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की विशाल योजना बनाई और सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त की। यह रेलवे लाइन कुस्तुनतुनिया अंगोड़ा से होते हुए बगदाद तक जाने वाली थी और इसका अंतिम गंतव्य स्थान ईरान की खाड़ी थी। इस तरह यूरोप के प्रबलतम राष्ट्रों से मैत्री स्थापित करके सुल्तान ने अपनी स्थिति काफी सुदृढ़ बना ली। वास्तव में वह विश्व के अन्य राष्ट्रों को दिखलाना चाहता था कि यूरोप का मरीज चंगा हो गया है तथा उसे छेड़ना खतरनाक है। तुर्क साम्राज्य का ह्रास और क्रांति। सुल्तान की दमनकारी और कूटनीतिक वैदेशिक नीति भी तुर्की की एकता एवं संगठन वापस लाने में सफल नहीं हो सकी। इसके राज्यकाल में ही बर्लिन कांग्रेस के निर्णयों के द्वारा प्रमुख बाल्कन राज्य सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो एवं रोमानिया आजाद हो गए और बल्गेरिया को स्वशासन प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त साइप्रस ब्रिटेन के हाथ लग गया और बोस्निया तथा हर्जेगोविना तुर्की के अधीन रहने पर भी ऑस्ट्रिया के शासनाधिकार में चले गए। इसके बाद भी दूरवर्ती प्रांत एक एक कर तुर्की के हाथ से निकलते गए। 1881 ईस्वी में ट्यूनीशिया पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया और 1882 ईस्वी में ब्रिटेन ने मिस्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके अतिरिक्त 1897 ईस्वी में क्रीट ने भी स्वराज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार तुर्की का अधःपतन जारी रहा। सुल्तान के प्रयासों के बावजूद तुर्की में अंदर ही अंदर असंतोष की आग सुलगती रही तथा जनतांत्रिक आंदोलन की जड़ें विकसित होती गई। अखिल इस्लामियत के प्रचार होते हुए भी अरब प्रदेश के निवासी सुल्तान से असंतुष्ट थे। तुर्की में तरुण युवकों ने तरुण तुर्क आंदोलन यंग टर्क मूवमेंट का सूत्रपात 19वीं सदी के मध्य में ही कर दिया था। इसके प्रमुख नेताओं ने बाहर मैसिडोनिया एवं सैलोनिका में अपना केंद्र कायम किया था। मैसिडोनिया में बिल्कुल अराजकता छाई हुई थी तथा इसका भी तुर्की के हाथ से निकलना अवश्यंभावी था। इसके अतिरिक्त 1907 ईस्वी के आंग्ल रूसी संधि द्वारा तुर्की के विभाजन का खतरा पुनः उपस्थित हो गया। अतः मैसिडोनिया स्थित तुर्की फौज के अधिकारी अनवर नियाजी एवं तार संचालक तलात ने इत्तिहाद व तरक्की कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस नामक संस्था कायम की और क्रांति की तैयारियां आरंभ की। इस क्रांति का लक्ष्य 1876 ईस्वी के मिद्दत पाशा के संविधान का पुनर्स्थापना था। जुलाई 21, 1908 ईस्वी को मोनासिस नामक स्थान पर उन्होंने नए संविधान का ऐलान किया। तत्पश्चात अन्य स्थानों में संविधान की घोषणा की गई और इसी महीने में इन्होंने बढ़कर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। सुल्तान का सारा जाल छिन्न भिन्न हो गया और उसने संविधान को पुनर्प्रतिष्ठित किया और 17 दिसंबर 1908 ईस्वी को संसद की बैठक बुलाई। परंतु सुल्तान हार्दिक रूप से इसके पक्ष में नहीं था, अतः उसने पुनः एक षड्यंत्र किया। परंतु तरुण तुर्कों के सैनिक अधिकारियों ने महमूद शौकत पाशा के नेतृत्व में राजधानी पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात 26 अप्रैल 1909 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा की बैठक सान स्टेफानो में हुई तथा इसने सुल्तान को पदच्युत कर दिया और उसके भाई महमूद पांचवें को सुल्तान नियुक्त किया। इस प्रकार 31 वर्षों की तानाशाही का अंत हुआ, जो अंगरक्षकों, गुप्तचरों, बाह्य आडंबरों एवं फूट डालने की नीति पर आधारित था। परंतु तुर्की को जिस सुधार की आवश्यकता थी वह उसे प्राप्त नहीं हुआ और वह अवनति के गर्त में गिरता ही चला गया। अंत में सुल्तान हमीद का सारा तानाबाना तरुण तुर्क आंदोलन के थपेरों से बालू की भीत की नाई ढह गया। अंत में अब्दुल हमीद के निरंकुश शासन का महत्व। सुधारों की असफलता एवं तत्पश्चात निरंकुश शासन की स्थापना ने तुर्की में क्रांति की भूमिका निर्मित की। इसने तुर्की के इतिहास की धारा ही बदल दी, लेकिन इस काल में ही तुर्की के आधुनिकीकरण की भी नींव पड़ी। जर्मन सहयोग से निर्मित रेलवे एवं जर्मन प्रशिक्षित फौज से तुर्की की सरकार को दो महत्वपूर्ण संस्थाओं के विकास में मदद मिली। इससे देश के उद्योग धंधे में तरक्की हुई एवं रेलवे लाइन के क्षेत्र में नहरों का विकास हुआ। इसके साथ ही इस काल में बैंक भी काफी संख्या में खोले गए, जिससे देश के आर्थिक विकास में मदद मिली। वास्तव में टर्की भी ऑस्ट्रिया की तरह अनेक जातियों के संगम से स्थापित हुआ था तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास टर्की के लिए विघटनकारी था। ईसाई तो प्रायः अलग हो ही चुके थे, अब अरब अफ्रीकी, कुर्द, यहूदी आदि भी पृथकता चाहते थे। अब्दुल हमीद ने निरंकुश शासन द्वारा उन्हें मिलाए रखने का अंतिम प्रयास किया और उसकी असफलता ने साम्राज्य के विघटन का रास्ता खोल दिया, जिससे युवा तुर्कों का अविरल प्रयास भी नहीं रोक सका। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।